राग माझ महला तीसरा। तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावै सब भरम भुलानी।
सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप इस शब्द में गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप हमारे ख्याल को हर तरह के वहमों, भ्रमों, संकल्पों, बाहरमुखी साधनों में से निकालते हैं और हमारे अंदर केवल एक शब्द या नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। आप फरमाते हैं कि हे परमात्मा, सारी दुनिया की रचना खुद तेरी पैदा की हुई है, लेकिन तेरी रचना के जीव तुझे बिल्कुल भूल चुके हैं। इन्हें अपने पैदा करने वाले का कोई पता नहीं है। ये रचना की भक्ति, रचना के प्यार में लगे हुए हैं, इसलिए ये वहमों भ्रमों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं। ये किन भ्रमों में फंसे हुए हैं? ये इस रचना को असल समझे बैठे हैं, जबकि रचना को नष्ट हो जाना है। ये इसे असल समझकर इसके मोह या प्यार में फंसे हुए हैं। इसका क्या नतीजा है? इन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। जब तक रचना के जीव तेरे साथ प्यार नहीं करते, तेरे नाम की कमाई नहीं करते, इनका इस रचना से छुटकारा हो नहीं सकता। ये मरण जन्म के दुखों से बच नहीं सकते। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये रचना चार हिस्सों में बांटी जा सकती है। अंडज हैं, जेरज, स्वेदज और उत्भिज। एक वह जीव हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे चिड़ियां, कबूतर आदि। दूसरे वह जीव हैं जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे भैंस, गाय, घोड़े आदि। इंसान भी इसी किस्म में आ जाता है। तीसरे वह जीव हैं जो मौसम की तब्दीली से पैदा होते हैं, जैसे मक्खियां, मच्छर, जुएं, कीड़े मकौड़े वगैरह। चौथे घास फूस वगैरह। गुरु साहब कहते हैं कि तेरी चारों प्रकार की रचना के किसी भी जीव को तेरा और तेरे नाम का कोई पता नहीं है, इसलिए ये भ्रमों में पड़कर देह के बंधनों और मरण जन्म के दुखों में फंसे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि जिस प्रकार चार तरह की खानियां हैं, उसी तरह चार तरह की वाणी है, परा, पश्चेती, मध्यमा और वैखरी। एक जो मैं बोलता हूँ आप सुनते हैं, दूसरी जो गले के जरिए बोली जाती है, तीसरी हृदय के जरिए बोली जाती है, चौथी जो योगी लोग नाभि के जरिए हिलोर उठाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि जिस नाम का मैंने जिक्र किया है वह इनमें से किसी वाणी में नहीं है। वह नाम लिखने, पढ़ने, बोलने में नहीं आता। उसका कोई समय निश्चित नहीं कर सकता, उसका कोई इतिहास नहीं लिख सकता। गुरु नानक साहब ने उसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। सच का मतलब है वह जो कभी नाश या फना नहीं होता। जब तक रचना के जीव उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, उनका इस रचना से, देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। वह कौन सा नाम है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। हम उस नाम की खोज करना चाहते हैं जिस नाम ने दुनिया की रचना की है, जिस नाम के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े दिखाई देते हैं। गुरु अर्जन देव जी फिर फरमाते हैं, खोजत खोजत खोजिया नामवें बिन कूर। हम खोज खोज कर इस नुक्ते या नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस नाम के जरिए परमात्मा ने दुनिया की रचना की है वह नाम कभी नाश नहीं होता। जो कुछ उस नाम ने पैदा किया है उसे नाश हो जाना है, लेकिन नाम कभी नाश नहीं होता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर बिन सब किछ मैला संतो। उस मालिक के बगैर सब मैल है, सब झूठ है, सभी को हमारा साथ छोड़ देना है। आसा दीवार में हम आम पढ़ते हैं, कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। ये शरीर भी कूड़ या नाशवान है, किसी को 60-70 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं उन्हें भोगने के बाद हर एक को दे यहीं छोड़ जाना है। किसी की मिट्टी के, किसी की अग्नि के स्पुर्द होकर रह जाती है। देह में बैठकर जिन शक्लों पदार्थों को हम अपना समझे बैठे हैं वह किस तरह हमारा साथ दे सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि ये कूड़ इस कूड़ के प्यार में फंसा हुआ है, उस सच्चे परमात्मा को भूला हुआ है। आप समझाते हैं कि सारी दुनिया में नज़र डालकर देखो, स्वाय एक परमात्मा के सब कूड़ है। केवल वह परमात्मा जिसने दुनिया की रचना की है, जो कभी नाश नहीं होगा, कभी फना नहीं होगा, वह एक परमात्मा ही हमारी भक्ति, हमारे प्यार, हमारी पूजा के काबिल है। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई। उस मालिक की भक्ति की महिमा का तो कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। हम बेटे बेटियों की भक्ति करते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करते हैं, धन दौलत की पूजा करते हैं, ये शक्लें ये पदार्थ हमारी भक्ति हमारे प्यार के काबिल नहीं हैं। इनका प्यार इनकी भक्ति हर एक को बार बार खींचकर देह के बंधनों की तरफ ले आती है। एक ही चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है, वह परमात्मा है, वह परमेश्वर है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुन्दर की बूंद हैं। जब तक उस मालिक की भक्ति करके उस मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, हमारा देह के बंधनों से मरण जन्म के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। गुरु साहब कहते हैं कि हम शब्द के जरिए नाम के जरिए मालिक की भक्ति कर सकते हैं। जो भक्ति उस मालिक को मंजूर है वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुकत न पावे कोई। केवल सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम सच्ची इज्जत या मालिक से मिलने का फख्र हासिल कर सकते हैं। उस नाम की कमाई के बिना कभी मुक्ति प्राप्त करने का, देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्या बणिया। भाई, अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा ले कि उस नाम की कमाई के बिना ना तू कभी मुक्ति हासिल कर सकेगा, ना इस दुनिया से कोई चीज पल्ले बांधकर साथ ले जा सकेगा। केवल एक नाम की कमाई है जो तेरा साथ देगी, बाकी सब दुनिया की चीजें यहीं रह जाएंगी। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कोई मालिक का भगत और प्यारा मिल जाए, वह नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, तब हम मालिक की भक्ति और पूजा कर सकते हैं, मालिक से मिलाप कर सकते हैं। फिर रचना से हमारा मोह या प्यार निकलता है और हमारे अंदर रचना करने वाले का मोह या प्यार पैदा होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल, तोसा बंदो जिए का एथे उथे नाल। गुरमुखों के पास जाकर सच्चे नाम की कमाई करो, यही एक चीज है जो पल्ले बांधकर हमें साथ ले जानी है। इसे हासिल करके यहाँ भी जिंदगी के चार दिन सुख और शांति के कट जाते हैं और इसी के जरिए वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि हमें उस नाम का पता नहीं है, हमने रचना में आकर उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ा, इसलिए हम दुनिया के जीव वहमों भरमों में फंसकर यहीं दिन रात भूले फिरते हैं। गुरु अमरदास जी ने निडरता के साथ खोलकर प्रचार किया है, बिन नाम में होर पूज न होवी, परम भूली लोकाई। अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति नहीं है, मालिक की कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसे हुए हैं, कोई सरोवरों में स्नान करना मुक्ति समझे बैठा है, कोई मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों या सत्संगों में आना जाना ही मुक्ति समझे बैठा है, कोई बेटी बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छुपना ही मुक्ति समझे बैठा है, कोई जटाएं रखने में लगा हुआ है, कोई कान चराने में लगा हुआ है, तो कोई जिस्म पर बबूत लगाने में और कई खास तरह के कपड़े पहनने में लगे हुए हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, नाम विसार चले अन मार्ग, अंतकाल पछताई ही है। तुम नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि इतने कीमती वक्त को बड़ी मुश्किल से मिले इंसान के जामे को फजूल खो दिया, वहमों भरमों में फंस कर खराब कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है। विण नामे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी। उस नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। बेकार में यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। बार बार 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। हाथी के पांव में सबका पांव। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है वह शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात सिमरन चढ़ा हुआ है तो आप सोचें इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम मालिक के हुक्म और रजा में रहते हैं तो इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं तो इससे बढ़कर पूजा और कौन सी हो सकती है। जब अंदर अनहद वाणी को सुनने में लगे हुए हैं तो इससे बड़ा पाठ और कौन सा होगा। जब शब्द और नाम के अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उचाट और उदास हो जाता है तो इससे बड़ा वैराग कौन सा हो सकता है। ना घर बार छोड़ने की जरूरत है, ना बेटे बेटियों को त्यागने की जरूरत है, ना कौम बदलनी है, ना मजहब बदलना है। दुनिया में रहना है, बहादुर बनकर रहना है, सूरमा बनकर रहना है, और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में नहीं लिबड़ना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नेसाने, सुरत शब्द पावसागर तरिये नानक नाम बखाने। भाई, मुर्गा भी पानी में रहती है, जब उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, फूल पानी के बाहर रहता है। इसी तरह तू अपनी सूरत को अंदर आंखों के पीछे लाकर शब्द से जोड़कर इस भावसागर से पार हो सकता है। नाम की कमाई को ही गुरु साहब ने सूरत शब्द का अभ्यास कहा है, उसे अकत कथा विचारना कहा है, हुक्म मानना कहा है, सच्ची वाणी को पकड़ना कहा है, और भी कई शब्दों से समझाने की कोशिश की है। जिस नाम की गुरु घर ने इतनी महिमा की है वह नाम हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणिया। ये जो हमारा शरीर है ये केवल हाड़ चाम मांस का ही बना हुआ नहीं है, ये 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर परमेश्वर ने अनगिनत वस्तुएं बेशुमार भंडार रखे हुए हैं, यहाँ तक कि परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने मिलने का रास्ता भी उसने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। इस बात की सूझ और समझ कब आएगी, जब कोई मालिक का सच्चा भगत मिल जाएगा, सच्चा प्यारा मिल जाएगा। वह क्या तरीका बताता है, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। वह समझाता है कि जिस परमात्मा की तुझे खोज है, गुरु साहब आगे खोल कर बताएंगे, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह या वजूद के अंदर बैठा हुआ है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसे गुरु साहब ने घर दर कहा है, मुक्ति का दरवाज़ा कहा है, तिल कहा है, वह जगह हर एक की आँखों के पीछे है। यहाँ से हमारा ख्याल उतरता है 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान के सुराख, 2 नाक के सुराख, मुंह नीचे 2 इंद्रियां के सुराख हैं। इनके जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। यहाँ बैठे हमें कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का टिककर नहीं बैठता, किसी न किसी की सोच, किसी न किसी के विचार में लगा ही रहता है। इस फैले हुए ख्याल को संतों महात्माओं के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए फिर वापस लाकर आँखों के पीछे और बीच में इकट्ठा करना है। वह हमारे घर का दरवाज़ा है। जिस दरवाजे पर ख्याल इकट्ठा करना है उस दरवाजे की निशानी क्या है, गुरु साहब कहते हैं अनहद शब्द बजावणिया। उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से उठ रही है, चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर से उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हम उस आवाज को सुनकर अंदर घर का रुख कायम कर लेते हैं, उस प्रकाश के जरिए, रोशनी और ज्योति के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हम शाम को सैर करते हुए डेरे से कहीं बाहर चले जाएं, अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, हमें अंधेरे में पता ना चले कि हम डेरा किस तरफ छोड़ आए हैं, तो हम डेरे पहुंचने के लिए क्या करते हैं? बड़े ध्यान से सुनते हैं कि डेरे की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ आती हो, किसी सायरन की आवाज़ आती हो, किसी घंटी की आवाज़ आती हो। उस आवाज़ को सुनकर हमें एकदम डेरे के रुख का पता चल जाता है कि डेरा अगली तरफ है कि पिछली तरफ है, दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है। रुख का पता तो चल गया, लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है, झाड़ियां हैं, कहीं पानी भी होगा। अगर हाथ में टॉर्च या दिया सलाई हो, हम उससे रास्ता देखते देखते डेरे या अपने घर वापस आ जाते हैं। कौन सी चीज़ हमें वापस लाई? वह आवाज़ लाई, वह प्रकाश लाया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा के घर से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमें अपने तक पहुंचने के लिए हम सबके अंदर वह आवाज़ भी रखी है, वह प्रकाश भी रखा है। इसलिए गुरु साहब अपनी वाणी में निर्मल नाद का जिक्र करते हैं, शब्द की धुनकार धुनों का जिक्र करते हैं, उस ज्योति या प्रकाश का जिक्र करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नौदर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनामणिया। नौ दरवाजों में से ख्याल निकाल कर आंखों के पीछे इकट्ठा करो, उस नुक्ते पर हर एक के अंदर वह अनहद शब्द दिन को भी बजता है, रात को भी बजता है। हम सो जाते हैं, वह शब्द तब भी हमारे अंदर दिन रात धुनकारें देता है, लेकिन जब तक हम उस नुक्ते पर नहीं पहुंचते जहां दाता दात दे रहा है, नाम रूपी अमृत की बख्शिश कर रहा है, जहां अमृत से भरा नाम बरस रहा है, हम उस अमृत को किस तरह पी सकते हैं, उस प्रकाश को किस तरह देख सकते हैं, धुनकार धुनों को किस तरह सुन सकते हैं। गुरु रामदास जी का कथन है, नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। भाई, आंखों के नीचे नीचे सिर्फ इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लस्तें हैं। अगर तू रस के भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, तो वह तेरी आंखों के पीछे बरस रहा है। उस नाम को ही गुरु साहब अमृत कहकर याद करते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा, वह नाम ही अमृत है और उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि जो अभी बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों मजमों मुल्कों के झगड़े मान बड़ाई मीठी लगती है, शराबों कबाबों की लस्तें मीठी लगती हैं, ये सब फीकी लगनी शुरू हो जाएंगी। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाएं, वह क्यों कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें खाएगा? लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। ये हमारा मन जो रचना के मोह और प्यार में फंसा हुआ है, इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है, जब आंखों के पीछे आने पर इसे इन भोगों से ऊंची और निर्मल लज्जत मिलने लग जाती है, तो इसके अंदर से अपने आप इनका मोह निकल जाता है। ये उस अमृत में, उस प्रकाश में, उन धुनकार धुनों में लीन हो जाता है। उस शब्द का लगाव अपने आप हमें दुनिया से उचाट या उदास कर देता है। डिटैचमेंट नेवर क्रिएट्स अटैचमेंट, अटैचमेंट क्रिएट्स डिटैचमेंट। प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है, त्याग कभी हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं करता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए, जब गुरमुखों के जरिए तुम शब्द के साथ ख्याल जोड़ोगे, तुम्हारे अंदर से झूठी दुनिया का झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा, सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि हम अंदर उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, इसलिए हम भ्रमों में फंसकर दिन रात यहीं भूले बैठे हैं। इन भ्रमों से छुटकारा हासिल करने के लिए अंदर शब्द के प्रकाश को देखना है, शब्द की धुनकार धुनों को सुनना है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां ज्योतियां जलाई जाती हैं, शंख और घंटे बजाए जाते हैं। ये एक तरह की रस्म है जो हमें ये बताने के लिए है कि इस तरह की शंख और घंटे की आवाज़ आंखों के पीछे आ रही है, इस प्रकार की ज्योति आंखों के पीछे जल रही है। ये नकल है, वह असल है। इनसे फ़ायदा उठाकर हमें उस असल को ढूंढने की कोशिश करनी है। इनकी पूजा में नहीं लगना, इनकी भक्ति में नहीं लगना। ये ज्योतियाँ, शंख और घंटे हमारे अंदर शौक पैदा करने के लिए हैं, विरह और तड़प पैदा करने के लिए हैं, ताकि हम अपने अंदर ज्योति के दर्शन करें, अपने अंदर घंटे की आवाज़ सुने। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, इन्हीं की पूजा में लग जाते हैं, इन्हें ही माथा टेकना शुरू कर देते हैं। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि जब तक उस सच्चे शब्द से ख्याल नहीं जुड़ता, हमारा किसी का मरण जन्म के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में संत महात्मा उस शब्द और नाम की महिमा करते हैं। उन्हें पढ़ने से साधन और तरीके का पता चलता है, लेकिन ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों को पढ़ने से किसी का ख्याल शब्द के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल सच्चे शब्द या नाम के साथ जुड़ता है। टाइम टेबल देखने या सुनने से कभी किसी का रेल का सफर तय नहीं हुआ। जानकारी ये हो जाती है, तरीके का पता चल जाता है कि रेल का सफर किस तरह तय करना है। जब तक उस इल्म को असली जामा नहीं पहनाते, टिकट लेकर गाड़ी में नहीं बैठते, हमारा सफर किस तरह तय हो सकता है? डॉक्टर की किताबों में लिखे नुस्खों से जिस्म की बीमारियां नहीं जाती। हमें उन नुस्खों के अनुसार दवाई का इस्तेमाल करना है। हम इस ख्याल में भूले बैठे हैं कि महात्मा की लिखी वाणी को प्रेम से पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। खुद बैठकर कोई नहीं पढ़ता, खुद बैठकर कोई नहीं सुनता। किराए पर, ठेके पर ग्रंथी मिल जाते हैं, पंडित मिल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कितना पुण्य कमा रहे हैं। खुद बैठकर पढ़ें, खुद बैठकर महात्मा के वचन सुने, तो हमें अपनी त्रुटियों का पता चले, कमजोरियों का पता चले, उन्हें दूर करने का शौक पैदा हो, प्यार पैदा हो, तरीका या साधन पता चले। उस पढ़ने का भी कोई फायदा है, उस पढ़ाने का भी कोई फायदा है। हमने तो एक रस्म बनाई हुई है कि किसी के पढ़ने से ही हम मुक्ति हासिल कर लेंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सांस, नानक लेखे एक गल हर होमे चखना चाक। भाई, चाहे तू सारी उम्र पढ़ता रहे, सारा महीना सांस सांस के साथ पढ़ता रहे, केवल एक ही चीज तेरे लेखे में लिखी जाएगी कि तेरी सूरत अंदर शब्द को पकड़ती है। अगर तेरी सूरत ही अंदर शब्द को नहीं पकड़ती तो तेरा सारा पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ चला जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब ना लें कि हमें महात्माओं की लिखी वाणी नहीं पढ़नी। ज़रूर पढ़नी है, लेकिन सोच कर पढ़नी है, समझ कर पढ़नी है। हम रोज़ किसी न किसी महात्मा की वाणी पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमारा फ़र्ज ख़त्म नहीं होता। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उस पर अमल भी करना है। अमल क्या करना है? गुरु साहब आगे बताएंगे कि अपने ख्याल को आँखों के पीछे लाकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ना है।
गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सत गुर कोई ना पावणे आ।
गुरु साहब ने जिस नाम की इतनी महिमा की है, जिसे पकड़कर हम मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हमेशा के लिए बादशाह बन सकते हैं। मन में विचार पैदा होता है कि हमारा उस नाम से ख्याल किस तरह जुड़ेगा। आप फरमाते हैं, गुर सेवा ते हर नाम पाया, कि हम सतगुरु की सेवा के जरिए ही उस नाम के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं। सतगुरु की सेवा का मतलब है कि उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर जो रास्ता, जो साधन वह हमें समझाते हैं, उसके अनुसार ख्याल को आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं। सतगुरु की सेवा का कभी ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि उन्हें कोई रुपया पैसा देना है, सोना चांदी देना है, जमीन जायदाद उनके नाम करवानी है या उनके पैर दबाने हैं। सेवा से मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलना है। गुरु साहब ने अपनी वाणी में बड़ा खोल कर समझाया है कि गुरुमुख या सतगुरु तो सेवक की सुई तक नहीं लेते। अगर लेते हैं तो वह गुरुमुख नहीं है। आप गुरु नानक साहब की जीवनी पढ़कर देखें। आपने हाथों से करतारपुर में खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सारी उम्र साथ संगत की निशुल्क सेवा की। उन्हें क्या जरूरत थी खेती करने की, जबकि उनके इतने बड़े बड़े सेवक थे। उन्होंने ये सब कुछ हमें समझाने के लिए, अपनी मिसाल कायम करने के लिए किया। गुरु नानक साहब वाणी में लिख कर गए हैं, गुरु पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए। काल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणिए से। गुरु साहब कहते हैं कि जो गुरु और पीर होकर सिखों सेवकों से मांगते फिरते हैं उनके पांव पर मथा ही नहीं टेकना चाहिए। ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए, ऐसे महात्मा की संगत और सोबत करनी चाहिए जो खुद हक हलाल की कमाई करते हुए साथ संगत की सेवा करते हैं। किसी भी महात्मा की जिंदगी ले लें, किसी ने दुकानदारी की, किसी ने धुनिए का काम किया, किसी ने कपड़ा बुनने का काम किया, किसी ने कपड़ा छापने का काम किया, किसी ने नौकरी करके अपना गुजारा किया। महात्मा कभी अपना बोझ संगत पर नहीं डालते, वह तो उनके आगे जिंदगी की मिसाल रखते हैं। ऐसे महात्मा के उपदेश पर चलकर ही हमारा ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ सकेगा। साथ ही ये भी कहते हैं, बिन सतगुर कोई न पावणिया, कि जितनी मर्जी ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, अक्ल के जरिए बुद्धि के जरिए खोज कर लो, जिस नाम की आप महिमा करते हैं कभी हमारा ख्याल उस शब्द या नाम के साथ जुड़ नहीं सकता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरसों पाई, अनेक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई। भाई, जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है उसने नाम रूपी दौलत तेरे अंदर तेरे लिए रखकर उसका भेद गुरमुखों के स्पुर्द कर दिया है। तू मन बुद्धि के जरिए अक्ल के जरिए अपने अंदर ढूंढने की कितनी ही कोशिश करें कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। जब तक तू गुरमुखों की शरण हासिल नहीं करता, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलता। गुरमुख घोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते, वह तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं, क्योंकि वह दौलत तो हमारे अंदर हमारे लिए मालिक ने रखी हुई है। हमें पता नहीं कि हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में फंसे बैठे हैं। वह तरीका समझा देते हैं, साधन समझा देते हैं, जिससे फ़ायदा उठाकर हम अपने अंदर ही उस दौलत को हासिल कर लेते हैं। आप देखें कि विद्या की ताकत हर एक के अंदर होती है, लेकिन सोई हुई होती है। जब हम उस्तादों के हुक्म में चलते हैं, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत जाग उठती है और हम कितने आलम फाजल या विद्वान बन जाते हैं। जो डरते हुए स्कूलों कॉलेजों से ही भाग जाते हैं, विद्या की ताकत तो उनमें भी थी, लेकिन वे अनपढ़ ही आते हैं और अनपढ़ ही चले जाते हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, ज्यों ओडा कूप गुहेज किन काडे, त्यों सतगुर वस्त लहाइए। पुरानी आबादियों में मिट्टी से दबे हुए कुएं होते हैं। हमें पता नहीं होता कि यहाँ मिट्टी के नीचे कुआं दबा हुआ है। ओड वह सज्जन हैं जो अपने इल्म और हुनर से समझा देते हैं कि इस जगह जमीन के अंदर खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया कुआं मिल जाएगा। ओड मिट्टी में कुआं दबाकर खबर देने नहीं आते, उन्हें इल्म है, जानकारी है, जिससे फ़ायदा उठाकर हम कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि मालिक के भक्तों और प्यारों ने कोई चीज़ घोलकर तेरे अंदर नहीं डालनी, सब कुछ मालिक ने तेरे अंदर तेरे लिए रखा हुआ है। वह तेरे ख्याल को बाहर के भ्रमों में से निकाल देंगे, तुझे अंदर उस चीज़ को हासिल करने का तरीका और साधन समझा देंगे। इसलिए आप फरमाते हैं, बिन सतगुर कोई न पावणिया, कि अच्छी तरह मन में बिठा लो कि गुरमुखों के बगैर कभी ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुकत न पावे कोई, बिन सतगुर को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का ये कुदरती कानून बना रखा है कि वह जब भी मिलता है शब्द या नाम की कमाई के जरिए मिलता है, और शब्द या नाम की कमाई जब भी कर सकेंगे गुरुमुखों के जरिए, साधु संतों के जरिए कर सकेंगे।
हाँ वारी जियो वारी, हर सेती चित लावणे आ।
बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि जिस तरह हमारा मन पहले रचना के मोह या प्यार में फंसा हुआ था, माया की भक्ति के प्यार में फंसा हुआ था, जब हम गुरुमुखों साधुओं और संतों महात्माओं की संगत में आकर शब्द या नाम की कमाई करने लगे, तो उसी तरह हमारा मालिक से मोह पैदा हो गया, मालिक के साथ प्यार पैदा हो गया, हमारा मन मालिक की भक्ति में लग गया। गुरुमुखों ने हमारे ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ा, इसलिए हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को उन पर न्योछावर करते हैं, जिन्होंने हमारे मन से दुनिया के रंग उतार दिए, मालिक की भक्ति मालिक के प्यार का रंग चढ़ा दिया।
हर सच्चा गुर भगती पाइए, सहजे मन वसावणे आ।
अब समझाते हैं कि हमें मालिक की भक्ति क्यों करनी है, क्यों रचना में से प्यार निकालना है। गुरु साहब कहते हैं, हर सच्चा, वह मालिक सच्चा है, वह कभी नाश नहीं होता। हम रचना की जिन शक्लों और पदार्थों की भक्ति और प्यार में फंसे हुए हैं, वह सब झूठे हैं, उन्हें नाश हो जाना है, फना हो जाना है। सच्चे की भक्ति करके ही हम सच्चे हो सकते हैं, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सच्चे मालिक की भक्ति कब कर सकेंगे? गुरु भक्ति गुरुमुखों के जरिए कर सकेंगे, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए कर सकेंगे। गुरु साहब कहते हैं, सहजे मन वसावणया, जब हम साधुओं संतों महात्माओं की संगत में आ जाते हैं तो सहज में स्वाभाविक ही हमारे मन में मालिक की भक्ति बस जाती है, मालिक का प्यार बस जाता है। हमारा मन संगत का असर बहुत जल्दी लेता है। चोरों की संगत करो, चोरी करने की आदत पैदा हो जाती है। जुआरियों की संगत करो, जुआ खेलने की आदत पैदा हो जाएगी। शराबियों के पास बैठो, शराब पीने की आदत पैदा हो जाएगी। जब गुरुमुखों के सत्संग में जाते हैं, उनकी संगत और सोबत करते हैं, हम भी उनकी तरह मालिक की भक्ति और प्यार में लग जाते हैं। इसलिए गुरु रामदास जी हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हरते आइए। हे परमात्मा, अपने भक्तों और प्यारों की संगत दे, सत्संग दे, ताकि तेरी भक्ति कर सकें, तेरा ध्यान कर सकें। जब तक गुरुमुखों की संगत नहीं मिलती, हम मालिक की भक्ति मालिक के प्यार में नहीं लग सकते।
सतगुर सेवे ता सब के छ पाए, जे ही मन सा कर लागे ते हा फल पाए। सतगुर दाता सब ना वथुका, पूरे भाग मिलावणे आ।
पहले आपने समझाया था, हर सच्चा गुर भक्ति पाइए, वह सच्चा परमात्मा गुरुमुखों की संगत और भक्ति के जरिए प्राप्त होता है। अब समझाते हैं क्यों गुरुमुखों की संगत और सोबत करनी है। सतगुर दाता सबना वथु का, मालिक के भगत और प्यारे, मालिक के नाम का, मालिक के प्यार का, मालिक की भक्ति का भरपूर खजाना लेकर आते हैं। उनका खजाना भी भरपूर होता है, उन्हें देने का हुक्म भी होता है। आप फरमाते हैं कि हम मालिक से मिलने की जो इच्छा और तृष्णा लेकर उनकी संगत में जाकर नाम की कमाई करते हैं, हमारी वह मनोकामना या तृष्णा पूरी हो जाती है। अगर किसी का खजाना खाली है, वह दाता बना बैठा है, उसका हमें कोई फायदा नहीं है। अगर किसी का खजाना भरा हुआ है, उसे देने का हुक्म नहीं है, उसका भी हमें कोई फायदा नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि हमारे सतगुरु का खजाना भी भरा हुआ है, उन्हें मालिक की तरफ से देने का हुक्म भी है। इसलिए हम उनकी संगत में जाकर मालिक की भक्ति मालिक के प्यार के रंग में रंगे जाते हैं। उनके समझाने के अनुसार जब हम मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, तब मालिक से मिलाप कर लेते हैं।
एहो मन मैला इक ना ध्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजै भाए।
गुरु साहब समझाते हैं कि हमारे मन के मैल ही हमें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। ये कौन से मैल हैं? मन के अधीन होकर हम जो जो कर्म करते हैं, इच्छाएं तृष्णाएं करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार दुनिया में आना पड़ता है। हमारा मन रचना के मोह या प्यार में फंसकर दिन रात कर्म कमा रहा है, इच्छाएं तृष्णाएं पैदा कर रहा है, इसलिए हमारा मन दिन रात अति गंदा या मैला होता जा रहा है। ये क्यों मैला है? एक न त्याए कि ये एक की भक्ति नहीं करता, दूजे पाए कि ये दूसरों की भक्ति में लगा हुआ है। गुरु साहब का मतलब है कि एक मालिक के अलावा जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं सब दूजा है। तुलसी साहब ने इस रचना को गैर कहकर समझाया है। आप कहते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जब तक हम मन में से गैरों का ध्यान नहीं निकालते, हमारे हृदय के अंदर वह परमात्मा आकर नहीं बैठता। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक हमारा मन दुनिया का ध्यान करना नहीं छोड़ता, मन के मैल कभी दूर नहीं हो सकते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। हमारा मन केवल इसलिए मैला हो चुका है कि ये एक परमात्मा की भक्ति नहीं करता, अनेकों की भक्ति या प्यार में फंसा बैठा है। हमारी आत्मा पवित्र है, परमात्मा का अंश है, लेकिन ये मन का साथ ले चुकी है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जो जो मन के मैल हैं, मन की इच्छाएं तृष्णाएं हैं, मन के किए हुए कर्म हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, तब तक ये मालिक के साथ मिलने के काबिल नहीं हो सकती। आत्मा मन का साथ तभी छोड़ेगी जब मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने टिकाने पर पहुंच जाएगा। जब तक मन अपने टिकाने पर नहीं पहुंचता, आत्मा कभी इसके पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती। हमें जो भी उपाय करना है, तरीका सोचना है, आत्मा और मन की गांठ खोलने का करना है, इन कर्मों का हिसाब किताब खत्म करने का करना है, मन में से इच्छाओं तृष्णाओं को निकालने का करना है, आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाने का करना है। हम दुनिया के जीव मन के मैल को उतारने के लिए क्या साधन अपनाते हैं? गुरु साहब आगे इशारा करते हैं।
तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होरव धीरे हो मैं मल लावणे आ।
अगर कहीं भूले भटके महसूस कर भी लेते हैं कि हमारा मन अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है और इसे निर्मल करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम बाहरमुखी साधनों में फंस जाते हैं। कभी तीर्थों की तरफ चल पड़ते हैं, वहां स्नान करने को ही मन को निर्मल करने का साधन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि नदियों सरोवरों में स्नान करने से मन के जन्म जमांतरों के मैल दूर हो जाएंगे। कभी सोचते हैं कि ग्रंथों पोथियों को पढ़ने पढ़ाने में मन निर्मल हो जाएगा। कभी सोचते हैं कि पूजा पाठ द्वारा मन निर्मल हो जाएगा। कभी समझ लेते हैं कि मालिक ने बड़ा रुपया दिया है, इसे पूजा या दान पुण्य में लगा दो, मन अपने आप निर्मल हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं कि इन साधनों और तरीकों से हमारे मन पर और मैल चढ़ जाता है। जितना मन को बाहरमुखी साधनों से साफ करने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम मन पर और गंदे गंदे गिलाफ चढ़ा लेते हैं। मन में अहंकार आ जाता है कि मैं कौन कौन से तीर्थों की यात्रा पर नहीं गया, मैंने कौन कौन से सरोवरों में स्नान नहीं किया, कितना पुण्य किया है, कितने जप किए हैं, कितने तप किए हैं, मंदिरों गुरुद्वारों में चले जाओ, कितने बड़े बड़े पत्थर लोगों ने सेवा के लगाए हुए हैं ताकि दुनिया को पता चले कि मैं कितना दान पुण्य करने वाला हूँ। जिस मन में नम्रता या दीनता आनी थी, उस मन में और अहंकार आ जाता है। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि बाहरमुखी साधनों के जरिए तुम कभी मन को निर्मल नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए शरीर सर्वर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, सब दे मैल गुवाई। भाई, इस शरीर से बड़ा दुनिया में कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर तुझे मन को निर्मल करना है, शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। किस चीज का स्नान करना पड़ेगा? नाम का स्नान करना पड़ेगा, शब्द का स्नान करना पड़ेगा। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वह शरीर का मैल उतारेगा? जन्मों जन्मों के मन के मैल पानी के धोने से कैसे दूर हो सकते हैं? गुरु रामदास जी की वाणी है, सतगुर पुरख अमृतसर वडपागी नामे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दड़ाए। गुरुमुखों की संगत और सोबत में जाना अमृत के सरोवर में स्नान करना है। लेकिन कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है जो दुनिया की लोक लाज छोड़कर उनकी संगत और सोबत में आते हैं, उन्हें इसका क्या फायदा मिलता है, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दिढ़ाए। उनकी संगत में जाकर जब वे नाम की कमाई करते हैं, उनके जन्म जन्म के मैल उतर जाते हैं। जन्म जन्म के मैल जब भी उतरेंगे, केवल शब्द या नाम की कमाई से उतरेंगे। ये सरोवरों के स्नान करने से, ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों के पढ़ने से, दान पुण्य करने से, जब तक पूजा पाठ हवन वगैरह करने से नहीं उतरेंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा। भाई, वह सच्चा अमृत का सरोवर जहाँ कौआ जाता है, हंस बनकर निकल आता है, हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर आ जाते हैं, वह सरोवर कहाँ मिलेगा? काया अंदर, वह शरीर के अंदर है, देह या वजूद के अंदर है। गुरु साहब हमारे ख्याल को हर तरह के बाहरमुखी वहमों भरमों से निकालते हैं और अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं।
सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए।
बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं कि अगर बाहरमुखी साधनों से मन का मैल नहीं उतरेगा तो किस तरह हमारे मन के मैल उतर सकेंगे। गुरु साहब कहते हैं, सतगुर सेवे ता मल जाए, कि सतगुर की सेवा से मन का मैल दूर होगा। सतगुर की सेवा क्या है? गुरु साहब कहते हैं, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, कि सतगुर की ये सेवा है कि सिमरन और ध्यान के जरिए नौ द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करो। इसे गुरु नानक साहब जीवत मरना क्यों कहते हैं? जब किसी की मौत आती है तो पहले उसके पांव ठंडे हो जाते हैं, फिर उसकी टांगें ठंडी हो जाती हैं, फिर उसका धड़ ठंडा हो जाता है। उसके अंदर आत्मा भी होती है, उसे अपने आप का होश भी होता है। जिस समय आत्मा सिमट कर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वह मर गया। गुरु साहब कहते हैं कि तुम सिमरन और ध्यान के जरिए जीते जी मरकर शब्द को अंदर पकड़ लोगे तो तुम्हारा मालिक से प्यार पैदा हो जाएगा और तुम्हारे मन के मैल दूर हो जाएंगे। इसलिए मन के मैल को दूर करने का एकमात्र तरीका है, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, कि जीते जी मरकर शब्द को पकड़कर मालिक से प्यार पैदा करो। गुरु अमरदास जी का कथन है, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाए। भक्ति तो दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार मालिक की करते हैं, लेकिन लोग मन के पीछे लगकर बाहरमुखी हुए बैठे हैं, इसलिए ये भक्ति उन्हें कभी उनके टिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति टिकाने पर ले जाती है? शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा था ए पाई। जब शब्द के अंदर मर जाओगे, जज़ब हो जाओगे, अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर दोगे, शब्द का ही रूप बन जाओगे, तब मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, ए पूजा था ए पाई। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सिर्फ यही मालिक की सच्ची भक्ति है जो तुम्हें वापस अपने ठिकाने पर पहुंचाएगी। इसलिए जो चीज़ हमारे मन को निर्मल करती है वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। छुरी पर कितना ही जंग क्यों ना चढ़ा हो, उसे आहिस्ता आहिस्ता सान पर रगड़ना शुरू कर दें, छुरी पर से सारा जंग उतर जाएगा, साफ सुथरी छुरी निकल आएगी। हमारे साकत पुरुषों के कितने ही बुरे और खोटे पाप और कर्म क्यों ना हों, अगर हम नाम के साथ मन को जोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितना ही सूखी घास का ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देगी। हम साकत पुरुषों के कितने बुरे खोटे पाप और कर्म क्यों ना हों, शब्द या नाम की कमाई सारे कर्मों का सिलसिला ही हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि अगर मन को निर्मल करना है तो जीते जी मरकर शब्द को पकड़ो। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अखी बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना बिन हथां करना, जीबे बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तौ खसमे मिलना। तुम उस चीज को आंखों से देख नहीं सकते, जबान से बयान नहीं कर सकते, कानों से सुन नहीं सकते। जब तुम जीते जी मरकर अपने आप को पहचानोगे, तभी तुम उस परमात्मा को पा सकोगे। वहां पहुंचकर पता चलता है कि शब्द क्या चीज है, नाम क्या चीज है। आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लस्तें हैं। वह शब्द या नाम तो आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। गुरु साहब कहते हैं कि जब तक आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके जीते जी मरकर शब्द को नहीं पकड़ते, मन कभी निर्मल नहीं हो सकता।
हर निर्मल सच मैल ना लागे, सच लागे मैल गवावणे आ।
गुरु साहब कहते हैं हर निर्मल सच मैल न लागे, कि वह मालिक पवित्र है, सच है, वह कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो उस मालिक से जुड़ जाते हैं वह भी सच्चे हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। आप प्यार से समझाते हैं कि शब्द या नाम पवित्र है, हम भी उस शब्द को पकड़कर पवित्र हो जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लेवलाई, कि जो लोग सारी दुनिया से मोह या प्यार निकालकर एक शब्द के साथ ख्याल जोड़ देते हैं वह खुद भी पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र कर लेते हैं।
बाझ गुरु है अंध गुबारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा।
आप फरमाते हैं बांझ गुरु है अंध गुबारा, कि दुनिया में नजर डालकर देखो, गुरुमुखों की संगत के बगैर सारी दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है, जुल्म ही जुल्म है। लोग बुरी तरह से अज्ञानता के अंधेरे में फंसे हुए हैं। कोई सरोवरों में स्नान करने को मुक्ति समझे बैठा है, कोई गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में चक्कर लगाने को मुक्ति समझे बैठा है, कोई ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्र पढ़ने में मुक्ति समझे बैठा है, कोई बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपा बैठा है, कोई शरीर पर भभूत लगाता है, कोई कान चराता है, कोई जटाएं रखता है, क्योंकि उन्हें गुरुमुखों की संगत प्राप्त नहीं हुई, गुरुमुखों से परमात्मा की सच्ची भक्ति का भेद प्राप्त नहीं हुआ। एक तो वह खुद अंधे हैं, दूसरे वह अंधेरे में फंसे हुए हैं, एक और तो उन्हें रास्ते का पता नहीं, दूसरी और उन्होंने सिर पर पापों का बोझ उठाया हुआ है। वह यहीं दिन रात अज्ञानता के अंधेरे में भटकते और तड़पते फिरते हैं।
बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे, फिर बिस्टा माहे पचावणे आ।
दुख तो जरूर होता है कि इतने बड़े महात्मा होकर हम दुनिया के जीवों को किस तरह पुकारते हैं, लेकिन संत महात्मा समझाते समय लिहाज नहीं करते। कहते हैं विष्टा के कीड़े विष्टा कमावे, हम दुनिया के जीव गंदगी के कीड़े हैं। गंदगी क्या है? आप सारी रचना को ही गंदगी कहकर याद करते हैं। सोच कर देखें कि हम गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी से ही प्यार किया हुआ है, गंदगी में ही रहते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं, फिर से इस गंदगी में ही पैदा हो जाते हैं। गंदी नाली का कीड़ा सारी उम्र गंदगी में ही गुजार देता है और फिर वहीं जन्म ले लेता है। इसलिए गुरु साहब हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं।
मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ मैं ममता सब देखो वे।
गुरु साहब केवल हमारी हालत ही बयान नहीं करते, केवल हमारे साथ अफसोस ही नहीं करते, हमें यहां से निकालने का भी कोई तरीका और साधन समझाते हैं। आप कहते हैं मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता सब देखोवे, कि ये हौमे है, ममता है, माया का मोह या प्यार है, जिसके कारण हमें बार बार रचना के दुखों में फंसना पड़ता है। अगर हम शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं तो ये हौमे की रुकावट हमारे रास्ते से दूर हो जाती है, हमारे अंदर से माया का मोह या माया का प्यार निकल जाता है, हम मुक्ति हासिल कर लेते हैं। जब फिर कोई हमारी संगत में आएगा तो वह भी हमारी संगत से फायदा उठाकर शब्द या नाम की कमाई करके हमारी ही तरह मुक्ति हासिल कर लेगा। गुरु साहब के कहने का भाव है कि जो कोई शब्द या नाम की कमाई करके होमे की रुकावट को अपने अंदर से दूर कर लेता है, माया का मोह या प्यार अपने अंदर से निकाल देता है, केवल वही मुक्ति हासिल कर सकता है। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहें, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहें। होमे पुरानी ला इलाज बीमारी है। हम होमे के कारण ही रचना का हिस्सा बने बैठे हैं। वह मालिक ही हम पर दया मेहर करे और गुरुमुखों के जरिए हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जोड़ दे तो हमारे अंदर ये होमे की बीमारी दूर हो सकती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दे होमे किन मारी, जितने मर्जी उपाय कर लो, तरीके सोच लो, जो मर्जी बाहरमुखी साधन कर लो, शब्द या नाम की कमाई के बगैर तुम्हारे अंदर से होमे कभी निकल नहीं सकती। गुरु अमरदास जी एक अन्य जगह कहते हैं, होमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। होमे और नाम की दुश्मनी है। जहां नाम बसता है वहां होमे नहीं रह सकती। गुरु साहब के समझाने का भाव है कि जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, हम ना तो होमे का नाश कर सकते हैं और ना ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
अन दिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावणे।
ऐसे सज्जन हमें कब मिलते हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, जिनकी संगत में जाकर शब्द की कमाई करके हमें होमे को अपने अंदर से दूर करना है। पूरे भाग जब मालिक की हम पर दया मेहर बख्शिश होगी तभी हमें ऐसे गुरुमुखों की संगत मिलेगी। जब भी हमें ऐसे गुरुमुखों की संगत प्राप्त होगी, मालिक की दया के जरिए, मालिक की मेहर और बख्शिश के जरिए होगी।
आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए।
आपे बख्शे मेल मिलाए कि हमें ऐसे गुरुमुखों को ढूंढने कहाँ जाना है, ये मालिक के अपने हाथ में है। जब वह हमें अपने साथ मिलाना चाहता है, वह खुद ही हमें ऐसे गुरुमुख या संत महात्मा की संगत में ले आता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे। भाई उस परमात्मा को भाएगा, उस परमात्मा को मंजूर होगा, तब तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिसनू दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई। जिस पर वह मालिक खुद दया बख्शिश करता है, उसे ही उसकी भक्ति और प्यार की दौलत मिलती है। यहाँ किसी की चतुराई, अकल या विद्या काम नहीं देती। आप कहते हैं कि वह परमात्मा बख्शिश किस तरह करता है, पूरे गुरते नाम निध पाए के गुरुमुखों के जरिए करता है, साधुओं संतों महात्माओं के जरिए करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब किसी जीव को इस रचना से निकालना चाहता है, वह गुरुमुखों के जरिए उसके ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ देता है।
सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणे।
सच्चे नाम सदा मन साचा, कि वह नाम सच्चा है। जब मन उस सच्चे नाम से जुड़ जाएगा तो हमेशा के लिए सच्चा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जब शब्द या नाम की कमाई करके मन निर्मल हो जाता है, तब अपने आप हमारा जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है।
सदा हजूर दूर ना जानो, गुर सब दी हर अंतर पछाणो।
शुरू में आपने समझाया था कि वह परमात्मा जिसने सारी दुनिया की रचना की है, वह रचना के कण कण में, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, वह सबके अंदर समाया हुआ है, लेकिन रचना को रचना करने वाले का पता नहीं है। और वह रचना करने वाला मिलता किस तरह है, उसका पता किस तरह चलता है, ये सब कुछ बयान करके कहते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पहचानो। गुरु साहब कहते हैं कि वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ चलता फिरता है, वह हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, हमारे वजूद के अंदर बैठा हुआ है। हमें गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने की कोशिश करनी है। वह जिसे मिला है अंदर ही मिला है, जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता वसे सब ना करे प्रतिपाला। वह परमेश्वर जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, बादशाह है, जो सबकी संभाल और परवरिश करता है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, देह या वजूद में बैठा हुआ है। वह शरीर में मिलता किस तरह है, गुर शब्दी हर अंतर पछाणो, के गुरमुखों से शब्द की कमाई का तरीका समझकर हम उस सच्चे परमात्मा को अपने अंदर ही पा सकते हैं। जब अपने अंदर उस परमात्मा को पा लेते हैं, तो जिधर भी परमात्मा की रचना में नजर दौड़ाएंगे, दुनिया के अंदर हमें परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। ये बात बड़ी सीधी है कि मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है और मालिक रचना के कण कण पत्ते पत्ते के अंदर समाया हुआ है, लेकिन इसकी समझ आसानी से नहीं आती। अगर हमें गुरु साहब के उपदेश की इतनी सी बात की समझ आ जाए, तो हमारी सारी जिंदगी ही बदल जाए। हम बुरे खोटे पाप और कर्म उस समय करते हैं, लोगों के गले उस समय काटते हैं, जब सोचते हैं कि हमें देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। जब देखने वाला पूछने वाला हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हम धोखा किसे देने में लगे हुए हैं? हम अपने आप को धोखा देने में लगे हुए हैं, क्योंकि मालिक को तो हम कभी धोखा दे ही नहीं सकते। हम मालिक का अपने अंदर 5 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं रखते, लेकिन अपने आप को मालिक के सेवक कहलाना चाहते हैं, मालिक के भगत कहलाना चाहते हैं। 5 साल का बच्चा सामने खड़ा कर दो, किसी की 2 पैसे की पेंसिल चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। हम कहने को कह देते हैं कि वह मालिक कण कण में, पत्ते पत्ते के अंदर है, हर एक के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम उसे हाजिर नाजर मानते हुए दुनिया में कौन कौन से झूठ नहीं बोलते, कौन कौन से पाप कर्म नहीं करते। भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। दुनिया के अंदर नजर दौड़ाकर क्या किसी की समझ में आता है कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, या दुनिया के कण कण पत्ते पत्ते के अंदर होगा? क्या दुनिया को देखकर पता चलता है कि हमारे अंदर उस मालिक का भय है, डर है? जब हमारी ये अवस्था है, तो हम मालिक की भक्ति किस तरह कर सकते हैं, मालिक के साथ प्यार किस तरह कर सकते हैं? हम दुनिया को ऊंचा और बड़ा समझते हैं। हम कहते हैं कि लोगों को पता ना चल जाए, दुनिया को पता ना चल जाए कि हमने ये कर्म किया है। अगर दूसरों को पता चल भी जाए, तो हमारा क्या कर लेंगे? मालिक को तो पता चल ही रहा है कि हम क्या क्या करतूतें कर रहे हैं, फिर हम छिपा किससे रहे हैं? गुरु साहब प्यार से कहते हैं कि भाई, तू किससे छुपा रहा है? वह मालिक तो 24 घंटे तेरे साथ साथ फिर रहा है, सब कुछ देख रहा है। अगर तू उससे मिलना चाहता है, तो शब्द की कमाई करके उसे अंदर ही ढूंढने की कोशिश कर।
नानक नाम मिला वडे आई, पूरे गुर ते पावणे आ।
गुरु अमरदास जी ने इस छोटे से शब्द के अंदर गुरु नानक साहब के उपदेश को हर पहलू से समझा दिया है। सब कुछ बयान करके कहते हैं, नानक नाम मिले वडियाई। जिन्हें भी परमात्मा से मिलने की बड़ाई मिलेगी, केवल नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके। आप कौन से नाम की महिमा करते हैं? पूरे गुरते पावणिया, जिस नाम की गुरमुखों, साधु संतों, महात्माओं से सोझी मिलती है। जब तक गुरमुखों के पास जाकर हम शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हम कभी मालिक से मिलने की बढ़ाई हासिल नहीं कर सकते। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक नाम न विसरे, छूटे शब्द कमाई। भाई, नाम को कभी ना भूलना। जब भी देह के बंधनों से छूटोगे, शब्द या नाम की कमाई करके। हमें भी चाहिए कि बाहरमुखी साधनों से, वहमों भरमों से, तरह तरह के संकल्पों से, कर्मकांड से अपने ख्याल को निकालकर शरीर के अंदर जाकर शब्द की खोज करें, उस नाम की खोज करें।
नानक नाम मिले वडेआई, पूरे गुर ते पावणे आ।